अध्याय 26 संक्षेपण अथवा सार लेखन। उत्पत्ति, अर्थ और उपयोगिता। संक्षेपण अथवा सार लेखन का हिंदी अनुवाद है प्रीसियस राइटिंग। प्रीसियस शब्द फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। संक्षेपण के अभ्यास से प्रश्न पत्र में दिए गए हुए गद्यांश अथवा पद्यांश को समझने में सुविधा होती है और संक्षेप में स्पष्टतः लेखन कला का ज्ञान होता है। इसकी आवश्यकता अधिक आधुनिक युग में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आज व्यक्ति को बहुत अधिक पढ़ने का समय नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त संक्षेपण के द्वारा विचारों को सुगमता से शीघ्र ही समझने और स्पष्ट रूप से सोचने के लिए अभ्यास होता है, जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लाभ होता है। संक्षेपण के लिए आवश्यक तत्व। संक्षेपण करते हुए मुख्यतः निम्नलिखित तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए: अर्थ, भाषा, आकार तथा लंबाई। पहला, अर्थ। दिए हुए अवतरण का अर्थ समझना आवश्यक है। इसके लिए अवतरण को सावधानी से पढ़ना चाहिए। प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना जरूरी नहीं, पूरे अवतरण को 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। अवतरण का एक उपयुक्त शीर्षक चुन लेना चाहिए। यह काम कठिन नहीं, क्योंकि प्रत्येक अवतरण में कोई ना कोई विचार अवश्य रहता है। यह विचार किसी समस्या अथवा किसी देश अथवा किसी व्यक्ति के विषय में हो सकता है। उसमें किसी दृश्य अथवा किसी वस्तु का वर्णन हो सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि इसका विषय क्या है। प्रधान विचारों को चुन लेना चाहिए और अप्रधान विचारों को छोड़ देना चाहिए। यदि शीर्षक को ध्यान में रखकर प्रधान विचारों को चुना जाएगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि उस शीर्षक से संबंधित विचार ही प्रधान रहेंगे और जो उससे संबंधित नहीं होंगे वे अप्रधान समझे जाएंगे। प्रधान विचारों को चुन कर उन्हें क्रम में रखकर अथवा उन्हें इस प्रकार रखें कि एक विचार दूसरे से संबंधित हो, इसको स्वाभाविक क्रम अथवा तारतम्य कहते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि शीघ्र ही समझ में आ जाए। कुछ विद्यार्थी दिए हुए अवतरण के विचारों की एक सूची मात्र बना लेते हैं, किंतु यह ध्यान देने की बात नहीं कि पहले किसको रखें और किसको बाद में। आवश्यक नहीं है कि उसी प्रकार लिखा जाए जिस प्रकार अवतरण है। इसके विपरीत अपनी सुविधा अनुसार और अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट करने की दृष्टि से विचारों को क्रम बदल देना चाहिए। कुछ विद्यार्थी पहले कुछ वाक्यों को छोड़ देते हैं और कुछ को चुनकर उन्हें ही रख देते हैं। यह संक्षेपण नहीं तो यह तो पूर्ण प्रस्तुति है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाषा। भाषा व्याकरण के नियमानुसार होनी चाहिए, तार वाली नहीं। संक्षेपण इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे ज्ञात हो कि विचार दूसरे का है, किंतु भाषा संक्षेपण करने वाली की। यदि भाषा संक्षेपण करने वाली की नहीं तो इसका अर्थ यह होगा कि उसने अवतरण को समझा ही नहीं और उसने कुछ वाक्यों को जोड़ तोड़ कर यूं ही रख दिया है। हाँ, तो जो छोटे छोटे साधारण प्रयोग के शब्द हों उन्हें व्यवहार में लाया जा सकता है, किंतु उन्हें भी अपना बनाकर प्रयोग करना चाहिए। संक्षेपण में सदा अन्य पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए, प्रथम पुरुष का नहीं। इसका कारण यह है कि प्रथम पुरुष के प्रयोग से ज्ञात होगा कि विचार संक्षेपण करने वाले के हैं, पर उसका विचार तो यह नहीं, यह विचार तो किसी अन्य व्यक्ति का है, इसलिए अन्य पुरुष का प्रयोग उचित है। काल के संबंध में कुछ विद्यार्थियों के मन में भ्रम है। संक्षेपण करते समय उसी काल का प्रयोग करना चाहिए जो दिए गए अवतरण में रहता है। संक्षेपण सदा अप्रत्यक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए। इसलिए जो वाक्य अवतरण विराम अथवा उद्धरण चिन्ह के अंदर रहें उन्हें प्रत्यक्ष रूप से लिखना चाहिए। यदि संवाद अथवा वार्तालाप का संक्षेपण करना हो तो उसे अप्रत्यक्ष कथन से लिखना चाहिए। पूरी संवाद का सारांश समझ कर उसे अप्रत्यक्ष कथन से लिखना चाहिए। आकार तथा लंबाई। दिए हुए अवतरण संक्षेपण कितना बड़ा अथवा छोटा हो, इस संबंध में कुछ मतभेद हैं। संक्षेपण का अवतरण 1/3 भाग होना चाहिए। यह काम बहुत कठिन नहीं। दिए हुए अवतरण के सभी शब्दों को गिनकर उसे 3 से भाग दे देना चाहिए। इस प्रकार उसे 1/3 भाग से लिखना चाहिए। इसका अर्थ कहीं नहीं कि संक्षेपण करते समय कुछ कम अथवा अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, वह 1/3 से बहुत कम अथवा बहुत अधिक ना हो। कुछ विद्यार्थी दिए हुए अवतरण के 1/3 भागों के वाक्यों को चुनकर उन्हें ज्यों का त्यों रख देते हैं, किंतु यह भूलना चाहिए कि यह संक्षेपण नहीं कहलाता। दिए हुए अवतरण का 1/3 भाग करने के लिए इन तत्वों की सहायता लेनी चाहिए। प्रयोग: त्याग विधि, प्रतिस्थापन विधि, पुनरुक्ति विधि, वाच्य प्रयोग, लेखक के नाम का बचाव। त्याग विधि: इस विधि के अनुसार दिए हुए अवतरण को जितने भी अलंकार और उद्गरण हो उन्हें छोड़ देना चाहिए, उनका अपनी भाषा में लिखना चाहिए। इससे दो लाभ होगा, पहला यह कि शब्दों की संख्या कम हो जाएगी और दूसरा यह कि उसे मालूम पड़ेगा कि भाषा आपकी अपनी है। उदाहरण के लिए, वह इतना बहादुर है जितना कि एक शेर। यहाँ जितना कि एक शेर एक अलंकार है जिसमें उपमा अलंकार कहते हैं। संक्षेपण करते समय इस अंश को छोड़ देना चाहिए, फिर उल्लिखित वाक्य बनेगा, वह बहुत बहादुर है। संक्षेपण करते समय अलंकारित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापन विधि: प्रतिस्थापन का अर्थ होता है बदलना। इसके अनुसार दिए हुए अवतरण में जो मुहावरे, कहावतें, शब्द समूह अथवा उपवाक्य रहें उन्हें एक शब्द में बदल देना चाहिए। उदाहरण के लिए, पुलिस को देखते ही उसके हाथ के तोते उड़ गए। हाथ के तोते उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है हक्का बक्का रहना। इसके लिए एक शब्द में बदल कर रख देना चाहिए, पुलिस को देखते ही वह हक्का बक्का रह गया। इस प्रकार शब्द समूह को भी एक शब्द में बदला जा सकता है। किसी व्यक्ति के लिए अपने देश को प्यार करना पर्याप्त नहीं, देशभक्ति पर्याप्त नहीं, उपवाक्य के बदले भी एक वाक्य का प्रयोग इस प्रकार लिखा जा सकता है, यदि यह कि आप ईमानदार हैं तो अच्छी तरह से मालूम है। पुनरुक्ति बचाओ: पुनरुक्ति का अर्थ होता है दोहराना। पुनरुक्ति किसी विचार अथवा शब्द का हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पुनरावृत्ति से शब्दों की संख्या बढ़ेगी। लेखक को अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए एक ही बात को कई तरह से रखता है, वह कभी कभी उसकी व्याख्या भी करता है। विद्यार्थियों को वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संक्षेपण में व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस सामान्य लेखक का छोटी छोटी बातें बहुत शब्दों की सहायता से व्यक्त करता है, इस कारण संभवतः कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए, वह 100 वर्ष का बहुत बहुत बूढ़ा आदमी है। यहाँ बहुत बहुत बूढ़ा आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसकी अवस्था 100 वर्ष की है वह तो बहुत बूढ़ा ही है। वाच्य प्रयोग: संक्षेपण में कर्म वाच्य का प्रयोग जहाँ तक हो सके कर्म कम से कम करना चाहिए। यदि पूर्णतः छोड़ा जा सके तो अति उत्तम होगा, क्योंकि कर्म वाच्य के प्रयोग से शब्दों की संख्या में वृद्धि होगी, इसलिए कर्तव्य वाच्य का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, राम द्वारा रावण का वध किया गया, कर्मवाच्य। राम ने रावण का वध किया, कृतज्ञवाच्य। लेखक के द्वारा नाम का बचाव: संक्षेपण में लेखक के नाम और उसकी परिचय नहीं दिया जाता। लेखक का नाम, पता आदि का ज्ञान रहने पर भी उनका उल्लेख नहीं करना चाहिए। नाम के स्थान पर लेखक अथवा कवि लिखना चाहिए। यदि इन तरीकों की सहायता से लिखा जाए तो शब्दों की संख्या अवश्य कम होगी। जहां एक ही विषय में कई प्रश्न अथवा उत्तर हो वहां इस प्रकार लिखना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, 1, 2, 3, इनके उत्तर इस प्रकार हैं। 1, 2, 3, जहां एक ही प्रश्न और उत्तर हो वहां पर इस प्रकार लिखना चाहिए। उत्तरदाता का नाम, डैश ने उत्तर में प्रश्नकर्ता का नाम से कहा कि जहाँ स्पष्ट न हो सके वक्ता अथवा लेखक कौन है, वहाँ इस प्रकार लिखना चाहिए, ऐसा कहा गया है, ऐसा बताया गया है। एक उत्कृष्ट संक्षेपक। सार: लेखक के गुण: निर्णयात्मक बुद्धि, सूक्ष्म रचना बुद्धि, भाषा पर संतोषजनक अधिकार। संक्षेपण, सार लेखन के प्रकार: सार लेखन, पत्र व्यवहार संबंधी, स्वतंत्र विषयक, पत्र व्यवहार संबंधी, प्रभा संक्षेप, तालिका सूची। प्रभा संक्षेप: प्रभा संक्षेप में तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। तालिका अथवा सूची में संक्षेप का प्रारूप इस प्रकार होता है: क्रम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक, भेजने वाले और पाने वाले का नाम, विषय। स्वतंत्र विषयक: जब किसी भाषण, लेख, वार्ता अथवा साहित्यिक कृति का सार लेखन किया जाता है तब वह स्वतंत्र विषयक सार लेखन कहलाता है। संक्षेपण, सार लेखन और सारांश लेखन में अंतर: आरंभ में लिडल की परिभाषा से ज्ञात होता है कि संक्षेपण सार लेखन सारांश के समान है, पर दोनों में अंतर है। संक्षेपण के लिए आवश्यक है कि अवतरण के महत्वपूर्ण तथ्य को एक तारतम्य में रखा जाए, किंतु सारांश में तारतम्य की आवश्यकता नहीं। संक्षेपण के समय हम दिए हुए अवतरण के तारतम्य को बदलकर अपने तथ्यों विचारों का तारतम्य बना सकते हैं, पर सारांश में दिए हुए अवतरण में आए हुए तथ्यों के तारतम्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संक्षेपण एक कला है जिसमें विशेष क्षमता प्राप्त करने के लिए अभ्यास आवश्यक है। परीक्षा उपयोगी अवतरण। जब हम हिंदी की सेवा की बात करते हैं और हिंदी सेवा शब्द का प्रयोग करते हैं, तब उससे हमारा उस समूचे मानव समुदाय की सेवा से मतलब होता है जो अपने विचार अथवा भावों का प्रकाशन हिंदी के माध्यम से करता है। वस्तुतः भाषा मनुष्य की सेवा का माध्यम है, अतः मानव को ही प्रमुखता देनी चाहिए। भाषा तो एक साधन है जिसके द्वारा हम मानव की सेवा करते हैं। साहित्य के निर्माण का भी यही लक्ष्य है। जो साहित्य केवल व्यक्तिगत सुख के लिए लिखा जाता है, उसकी क्या कीमत? अर्थात उस साहित्य का कोई मूल्य नहीं। सच्चा साहित्य तो वह है जो संपूर्ण मानव समाज को लक्ष्य कर रख लिखा जाता है। जो साहित्य मानव समाज के रोग, शोक, दारिद्र्य और अज्ञान को दूर कर उसे स्वस्थ, निश्चिंत, उन्नत, ज्ञान संपन्न और स्वावलंबी बना सकता है, वह साहित्य ही वास्तविक साहित्य है। वह साहित्य ही मानव समाज की अक्षय निधि है। जो साहित्य मनुष्य के दूसरों पर निर्भर रहने से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वही सच्चा साहित्य है। हमें ऐसे ही साहित्य का समावेश अपनी भाषा में करना चाहिए। यही हिंदी की सेवा है। शीर्षक: मनुष्य साहित्य का लक्ष्य। संक्षेपण सार लेखन। मनुष्य का अत्यंत महत्व है। भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है, उसकी क्या कीमत? परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज के रोग, शोक, दारिद्र्य, ज्ञान और परीक्षा उपयोगिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय अक्षय निधि है। उसी महत्वपूर्ण साहित्य को मनुष्य अपनी भाषा में ले आना चाहता है। कारखानों में उन्हीं वस्तुओं का निर्माण होता है जो कृत्रिम होते हैं। वीर कृत्रिम नहीं होते, वे तो स्वाभाविक होते हैं। वीर किसी के द्वारा बनाए नहीं जा सकते, क्योंकि वीरता एक स्वाभाविक गुण है। वह मनुष्य में जन्मजात होती है, किसी दूसरे के द्वारा उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार वन में देवदार के वृक्षों का कोई न बोता नहीं, ना कोई उनका पालन पोषण करता है, वे तो स्वयं बढ़कर पूरे वृक्ष बन जाते हैं, उसी प्रकार वीरों को ना कोई बनाता है और ना कोई बाहरी उपकरण उनके निर्माण में किसी प्रकार की सहायता देता है। वे तो एकांत जीवन में स्वयं प्राकृतिक रीति से बढ़कर वीर के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। वे दिखावे से दूर रहते हैं और उनका जीवन जवाहरत की खानों की ऊपर भूमि की तरह होता है। जिस प्रकार जवाहरत की खानों की ऊपरी जमीन को देखकर साधारण पुरुष यह नहीं कह सकता कि इस जमीन के अंदर जवाहर भरे पड़े हैं, उसी प्रकार किसी वीर के बाहरी जीवन को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि यह वीर है। शीर्षक: वीर। संक्षेपण सार लेखन। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के दरख्तों की तरह जीवन के अरने में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए होते हैं, फिर दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनका सारा जीवन भीतर ही भीतर होता है। बाहर से तो वे जवाहरत की खानों की ऊपरी जमीन की तरह कुछ दृष्टि में नहीं आता। इस संसार में हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। काम करते समय अपने कर्तव्य अथवा धर्म के पालन में हमारे सामने अनेक कठिनाइयां आ जाती हैं। इन कठिनाइयों में सबसे अधिक बाधाएं मुख्य रूप से चित्त चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की दुर्बलता। अर्थात मनुष्य का चित्त जब किसी एक कार्य में स्थिर नहीं होता, तब वह ना तो अपने कर्तव्य का निश्चय कर पाता है और ना ही कर्तव्य का पालन ही। इसी प्रकार जब मनुष्य के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, उस दशा में भी वह धर्म अथवा कर्तव्य पर टिका नहीं रह सकता। इसलिए इन तीनों को धर्म पालन में बाधक माना गया है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और आत्मा के लिए भले और बुरे कामों का ज्ञान रहता है, तो दूसरी ओर आलस्य और परता के भाव रहते हैं, जब उसे आलस्य का आ घेरता है तब वह कार्य नहीं कर पाता, इस प्रकार वह धर्म पालन में वंचित रह जाता है। इसी प्रकार कभी कभी स्वार्थ भी मनुष्य के धर्म पालन में बाधा डाल देता है। आलस्य और स्वार्थ से बचने के लिए अपने मन की निर्बलता को दूर कर उसे दृढ़ कर देना चाहिए। जब मन पक्का हो जाता है तब आलस्य स्वार्थ दूर हो जाते हैं, चित्त की चंचलता मिट जाती है, उद्देश्य की अस्थिरता भी नहीं रह जाती और मनुष्य आत्मा की आज्ञा मानकर धर्म पालन में प्रवृत्त हो जाता है। यदि मनुष्य का मन स्थिर ना रहे, वह डाबाडोल अवस्था में पड़ा रहे और उसके सामने कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, तो उस अवस्था में स्वार्थ परता उसे आ घेरेगी और उस मनुष्य का एक चरित्र घृणास्पद हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का कोई लक्ष्य स्थिर करना चाहिए, चित्त की चंचलता दूर कर देना चाहिए और मन को दृढ़ कर अपने धर्म का पालन करना चाहिए, तभी वह मनुष्य आदर के योग्य बन सकता है। शीर्षक, कर्तव्य और सत्यता। संक्षेपण, सार लेखन। धर्म पालन करने में मार्ग सबसे अधिक बाधावित चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता में पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के भले बुरे कर्मों का ज्ञान और दूसरी और आलस्य और स्वार्थ परता रहती है। मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच पड़ा रहता है और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करना करता है, यदि उसका मन कुछ काल तक द्विविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थ परता निश्चय उसे आ घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। जिस समाज में धनियों और पूंजीपतियों के अधीन रहकर धर्मोपदेष्टा और अध्यापक ज्ञान का प्रचार करेंगे, वहां प्रत्येक दुखी व्यक्ति के हृदय में इस आर्थिक विषमता से उत्पन्न अग्नि दहकती रहेगी। यदि समाज में आर्थिक विषमता समाप्त नहीं होती है, समता का राज्य कायम नहीं होता है, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन समाज में क्रांति आ भड़क उठेगी और उस विनाशकारी ज्वालामुखी की आग की लपटें समाज की बुराइयों के साथ साथ समाज की अच्छाइयों को भी नष्ट कर देंगी, उन्हें जलाकर राख कर देंगी। जो व्यक्ति समाज में विद्यमान ऊंची कला विद्या और विज्ञान को बचाना चाहते हैं, उनका परम कर्तव्य वे है कि अन्याय, शोषण, उत्पीड़न, अज्ञान और छल कपट प्रवचन का स्पष्ट रूप से विरोध करें, इन सब दुर्गुणों को समाज से हटाने का प्रयास करें और आर्थिक विषमता को मिटाकर मनुष्य मनुष्य और प्राणी प्राणी में सद्भावना और शांति की स्थापना करने का प्रयत्न करें। इसके बिना प्राचीन सद्गुणों की रक्षा ना हो सकेगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर ही समाज में संस्कृति और कलाओं का विकास होगा तथा आत्म साक्षात्कार के इच्छुक को सुयोग भी मिलेगा। शीर्षक, समाज और धर्म। संक्षेपण, सार लेखन। जहाँ वैमस्य की आग प्रत्येक दुखी हृदय में दहकती रहेगी, वहाँ ज्वालामुखी एक दिन फूटेगी और क्रांति की लपट न केवल समाज की बुराई को वरन भलाई को भी भस्ममात कर देगी। जो लोग दूसरों को बचाना चाहते हैं, उनका कर्तव्य है कि अन्याय, शोषण, प्रपीड़न, अज्ञान, प्रवचन का निरंतर विरोध करें तथा मनुष्य मनुष्य प्राणी प्राणी में सद्भाव और शांति स्थापित करने का यत्न करें।